थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए अपने प्रिय मित्रों और परिवार वालों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहूदा की पत्री में मात्र एक अध्याय है, परंतु इसके शब्द और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे की ओर बढ़ें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से यहूदा की पत्री से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इस पत्री के द्वारा आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने वचन के ज्ञान दें, समझ दें, ताकि हर एक आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी विनती है कि अधिक से अधिक श्रोता इस अध्ययन के द्वारा लाभ उठा सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं परंतु निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, ताकि वे अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर आपके वचन पर विश्वास कर सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। पिताजी, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम नए नियम में से यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यहूदा हमें विधर्म की चेतावनी देता है, परंतु कहता है कि हम परमेश्वर के सदाकालीन प्रेम पात्र हैं और उसने हमें प्रभु यीशु के लिए सुरक्षित रखा है, क्योंकि हम प्रभु यीशु की भेड़े हैं जिनके लिए उसने अपनी जान दी। हम बुलाए हुए हैं, अर्थात प्रभु यीशु ने हमें निमंत्रण दिया है, पुकारा और हमने उसे ग्रहण करके उस पर विश्वास किया। हमारा उद्धार निश्चित है और हमारे लिए प्रभु यीशु परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। हम यह न सोचें कि हम स्वयं से उद्धार के योग्य हैं। हमारे उद्धार का श्रेय हमारे चरवाहे प्रभु यीशु को है। जी हाँ, आज बहुत से लोग गलतफहमी में हैं, सोचते हैं कि वे स्वयं से अपने उद्धार का उपाय कर लेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहूदा की पत्री उसके दो पद को पढ़ें। लिखा है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। मेरे प्रियो, हमें इन तीन शब्दों में अंतर समझना है, दया, शांति और प्रेम, और इनके मध्य उपस्थित संबंध को भी देखना आवश्यक है। प्रेम पिता परमेश्वर का गुण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह दयालु है और उसने हमें अनुग्रह प्रदान किया है। परमेश्वर का प्रेम सब मनुष्यों पर उमड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, उसकी इच्छा में किसी का विनाश नहीं है। वह पृथ्वी पर सबसे बराबर प्रेम करता है। उसका विशेष प्रेम पात्र कोई नहीं है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा तक से कह दिया था कि वह उसकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं देता है कि वह मूसा है। निर्गमन की पुस्तक 33:19 में लिखा हुआ है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि उसने स्वयं में उसका कारण पाया था। वह अपने सब प्राणियों से एक सा व्यवहार करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जी हाँ, वह आपकी चिंता करता है, और यदि आप जानते कि वह आपसे कितना प्रेम करता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपको तकलीफ होती है, चोट लग जाते हैं, और ऐसे पल में आप जानते हैं कि आप कितने कष्ट में होते हैं, लेकिन इस बात को जानें कि प्रभु यीशु आपके सारे घावों को, आपके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर कहता है कि मैंने तुम्हारे घाव, तुम्हारे बीमारियां और तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, अर्थात हमें उस दर्द से मुक्त कर देता है। मेरे प्रियो, आप उसके प्रेम को अनुभव करने से बच सकते हैं, परंतु उसके प्रेम से नहीं बच सकते। आप धूप से बचने के लिए छतरी काम में लेते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के प्रेम को रोकने के लिए भी छतरियां हैं। उसकी इच्छा के विरोध की छतरी, पाप की छतरी, आप उसके विरोध चलते हैं तो वह पाप है, और पाप की छतरी आपको परमेश्वर के प्रेम से वंचित करती है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परंतु आपका उद्धार उसके प्रेम से नहीं है। उसके अन्य गुण भी हैं। वह पवित्र है, वह धर्मी है, वह न्यायी है। जी हाँ, वह स्वर्ग के बाड़े को गिराकर अपने प्रतिमानों की अवहेलना करके आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। चाहे सांसारिक न्यायी घूस खाकर आपको निर्दोष कहकर छोड़ दे, यदि परमेश्वर ऐसा करने लगे तो वह भी इस दुष्ट न्यायी के तुल्य ही ठहरेगा। मैं परमेश्वर का अनादर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह दुष्ट न्यायी नहीं है। परमेश्वर को अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और अपना न्याय स्थिर रखना है। इसलिए हम देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके इस प्रेम में दया थी, चिंता थी। वह मनुष्य को संभालना चाहता था। इसी प्रेम के कारण उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, इस पृथ्वी पर भेज दिया। उसने आपके स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया और वह अपनी धार्मिकता के अनुसार आपको एक पापी को बचा सकता है। जी हाँ, यदि आप उसके पास आकर इस उद्धार को ग्रहण करें। यह इस प्रकार से है कि एक बैंक का मैनेजर आपको 1,00,000 का चेक देने के लिए खड़ा है और चाहता है कि आप आए और उसे ले लें, अपनी गरीबी दूर कर लें, परंतु आप देखते तो हैं और उसे ग्रहण नहीं करते। ऐसी अवस्था में आप उद्धार से वंचित हैं। प्रभु यीशु आपको उद्धार देने के लिए खड़ा है, चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। मेरे प्रियो, इस व्यवहार को परमेश्वर का अनुग्रह हम कहते हैं कि आप उसके पास उद्धार को ग्रहण करें। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। डॉक्टर आरसी ट्रेंच ने इन शब्दों में अंतर स्पष्ट अनुग्रह का संदर्भ मनुष्य के पापों से किया है, जो परमेश्वर के इस महिमामय गुण को प्रदर्शित कराते हैं। उनकी क्षमा में उसका निर्मल दान, दया पापों के परिणाम पीड़ा से सीधा एवं विशेष संबंध रखता है। अतः आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम नहीं अनुग्रह संसार के पापों से संबंधित है। परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता हमें दे दिया कि पापों का दंड वह भोगे। इस आधार पर परमेश्वर पापियों का उद्धार करता है। जी हाँ, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। पाप के कारण मानव जाति पर संकट आए। हम प्रायः एक प्रश्न पूछते हैं, प्रेमी परमेश्वर किसी को कैंसर क्यों होने देता है? मृत्यु और रोग मनुष्य पर पाप के कारण आए हैं। जी हाँ, परमेश्वर पाप के कारण मनुष्य की पीड़ा को देखता है और उसका मन दया से भर जाता है। परमेश्वर दया का धनी है। यदि आप उसके पास एक पापी रूप में आए और उसके उद्धार को ग्रहण करें, तो वह आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बचा लेगा। तदुपरांत दया का धनी होने के कारण वह आप पर दया करेगा। उस समय वह आपको शांति प्रदान करेगा, वह आपकी सहायता करेगा और आपके मन को शांति देगा। जी हाँ, आप अपनी आवश्यकताओं में उस पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। मुझे एक मित्र ने बताया कि उसे कैंसर हो गया था और 2 ऑपरेशन भी हुए, और डॉक्टर का कहना था कि अब वह फिर से कैंसर का पीड़ा झेल सकता है। कहने का अर्थ है कि दोबारा उसे फिर से कैंसर हो सकता है। उसके मन में यह आया, क्यों? उसने कहा, मेरी शरण मेरा स्वर्गीय पिता है। उसके पास उसके शब्द के साथ साथ प्रश्न भी थे, क्यों? क्यों का उत्तर है, परंतु उसने मुझे बताया नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे जो कुछ भी मांगा जाता है उसकी दया है। उसने हमें अनुग्रह के द्वारा बचाया है, परंतु अब वह हमें उसके अनुग्रह की आवश्यकता हमें बताता है। उसकी दया हमारे सांसारिक जीवन के कष्टों के प्रति उसका प्रेम है। जी हाँ, पापी को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है और उसकी असीम दया की भी आवश्यकता है। मेरे मित्र ने कहा कि मैं पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक दया को काम में ले रहा हूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं भी पिछले कई वर्षों से प्रभु के उस दया को काम में ले रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं डॉक्टर ड्रेंच के उदाहरण को और भी आगे पढ़ता हूं। कहता है, जबकि अनुग्रह का संदर्भ मनुष्य के पापों से है और ये पाप उस महिमामय गुण को प्रदर्शित करते हैं। पापों के क्षमा में उसका निर्मोल दान दया पापों के परिणाम स्वरूप कष्टों से संबंधित है। इस उदारता को केवल मनुष्य की लगातार भ्रष्ट अवस्था ही हटा सकती है या हरा सकती है। परमेश्वर के मन में जहां हमारा उद्धार है वहां दया अनुग्रह पहले से है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने संसार से ऐसा तरस खाने वाला प्रेम किया है, यह दया है जिसे हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह अनुग्रह है कि उसके द्वारा संसार उद्धार पाए। आप तुलना कर सकते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद, लुकार्चित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 78 और 79 पद। परंतु परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य को प्रकट करने के निमित्त अनुग्रह दया से पूर्व आता है और दया के लिए मार्ग तैयार करता है। मेरे प्रियो, यह सच है कि एक ही व्यक्ति दोनों का पात्र होता है। दोष और पीड़ा दोनों का तो परमेश्वर की धार्मिकता जिसे उसके प्रेम स्वरूप होना भी आवश्यक है। कहती है कि पीड़ा मुक्ति से पूर्व दोष मुक्ति आवश्यक है। केवल क्षमा प्राप्ति को आशीष मिलेगी। जी हाँ, चंगाई से पूर्व परमेश्वर को क्षमा करना आवश्यक होता है। मनुष्य को पवित्र होने से पूर्व धर्मी ठहरना है। परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य के प्रकाशन के निमित्त परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दया से पहले आता है। अनुग्रह को पहले चलकर उसकी दया का मार्ग तैयार करना होता है। परमेश्वर की शांति वह अनुभव है जो प्रभु यीशु में विश्वास करने पर मन को प्राप्त होता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखने का अर्थ यह अनुभव करना है कि परमेश्वर के साथ जीवन कठिन नहीं है। वह हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं करता है। वह हमें बताना चाहता है कि अब जब हमें यह बोध हो गया है कि हम पापी हैं और हम मसीह में विश्वास करने लगे हैं, तो परमेश्वर को हमसे कोई भी शिकायत नहीं है। मेरे प्रियो, संसार आपको दोष दे या आपको त्याग दे, परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है। वह आपसे प्रेम करता है और आपको शांति देता है कि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर सिर रखकर विश्राम करें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28 पद में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जी हाँ, जो उस पर विश्वास करते हैं सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। डॉक्टर आर ए टोरी इस पद को थके हुए के लिए कोमल तकिया कहते थे। यह कैसी अद्भुत प्रतिरूप है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं विधर्म का विषय। यहूदा के पत्री उसके 3 पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। लिखा है, हे प्रियो। यहूदा जब कहता है हे प्रियो, तो उसका अभिप्राय है परमेश्वर के प्रिय संतान जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। आगे कहता है, उद्धार जिसमें हम सब सहभागी हैं। यहूदा कहता है, मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहां कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा ने यहूदा को विश्वास के विषयों में से किसी एक पर पत्र लिखने से रोका जिससे कि वह आने वाले विधर्म के विरोध चेतावनी दे। विधर्म का अर्थ है प्रेरितों द्वारा दी गई विश्वास की शिक्षा से भटकना। यहूदा के समय विधर्म एक हाथ के बराबर बादल के समान था, परंतु आज वह एक बवंडर बन गया है। यहूदा विधर्म के विषय जो कुछ भी लिखता है वह आज के युग में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी हां, आज विधर्म एक भावी घटना नहीं, एक वर्तमान सत्य है। इसलिए वह आगे कहता है कि आवश्यक जाना। यहूदा को बाध्य किया गया था। वह कहता है, मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पूरा यत्न। कुछ टीकाकारों के अनुसार पूरा यत्न करने का अर्थ है घुटने टेकना, परंतु मुझे इस विचार पर कोई विशेषज्ञ धारणा नहीं देते, या यूं कहूं कि विशेष धारणा नहीं मिली है। इसका अर्थ है बैर भाव बिना पूरा पूरा यत्न करो। काश हम जलन और बैर भाव बिना विश्वास के लिए पूरा यत्न कर पाते। दूसरा तीमोथियुस 2:24-26 में पौलुस तीमोथियुस को शिक्षा देता है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। यहां पर यहूदा द्वारा यत्न करो का उपयोग करने का अर्थ है मसीही विश्वास की महान शिक्षाओं की रक्षा जी जान से करें। आगे कहता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास अर्थात सत्य जो एक ही बार सुनाया गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक को प्रेरितों की शिक्षा कहते हैं, और उसमें कहा गया है प्रेरितों के काम 2:42 में, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, यहां पहली बात प्रेरितों की शिक्षा है। परमेश्वर कलीसिया से इसकी अपेक्षा सबसे पहले करता है। अतः जो कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा से टल जाए वह कलीसिया नहीं है। एफिसियों की पत्री 4:15 में हमसे कहा गया है, सत्य की चर्चा प्रेम के साथ करें। मेरे मित्रों, यदि आप सत्य का प्रचार करते हैं तो प्रेम के साथ करें। यदि आप प्रेम से रहित हैं, तो आपका प्रचार शक के दायरे में है कि वास्तव में आप सत्य का प्रचार कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही हमें प्रश्नों का उत्तर देने में भी दीनता और भय के साथ तत्पर रहना है। विश्वासी मतभेद में रोष प्रकट नहीं कर सकता है। डॉक्टर केनेथ एस वरिष्ठ का अनुवाद है, परमेश्वर के प्रेम पात्रों में हम सबके उद्धार के विषय लिखा है। कहता है, तुम्हें लिखने का पूर्ण प्रयत्न करते समय मुझ पर रुकावट डाली गई कि तुमसे आग्रह करूं कि जोश एवं संकल्प के साथ उस विश्वास के लिए यत्न करो जो एक ही बार सदा के लिए पवित्र जनों की सुरक्षा में रखा गया है। मेरे प्रियो, यह अनुवाद भी बहुत अच्छा है। आज जो कार्य, जो सच्चाई, जो शिक्षा हमें सौंपी गई है, क्या हम उसको यत्न के साथ काम में ले रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि आज हम कहते हैं कि हम प्रभु के विश्वासी लोग हैं, तो क्या हमारे अंदर में दया, दीनता पाए जाते हैं? क्या हमारे अंदर में सत्य है? क्या हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये प्रश्न हमारे जीवन से हमें स्वयं पूछने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहूदा की पत्री हमें इस बात का स्पष्टीकरण देती है कि एक परमेश्वर के जन को जिसने उद्धार का अनुभव किया है, उसे यत्न करते ही रहना है ताकि वह परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप एक सही निर्णय लेंगे और दीनता और भय के साथ तत्परता से परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं